ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. اپنے کردار کو مضبوط بنانے یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے 7 habits of highly effective teens. اصل میں یہ ایک بہت ہی معروف کتاب ہے کہ کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. انہی رائٹر کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی اور اس میں اس نے زیادہ فوکس کیا یوتھ کو. اور ہر بندہ ینگ ہے جب اس کے حوصلے جوان ہیں. بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو ایک اوور ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اجتماعی زندگی میں ہماری کون سی عادات ہیں جن کا اثر ہوتا ہے اور ہم ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آئیڈیل عادات سیکھیں جو ہمیں گرانی ہیں, ہم 7 ایسی عادات دیکھیں گے. انہوں نے اپنی بک کے شروع میں 7 ایسی عادات دی ہیں کہ جو نکمے لوگوں کی ہوتی ہیں. یہ لکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کہاں سے بات کو شروع کر رہے ہیں. تو کامیاب سے پہلے ناکام لوگوں کی 7 عادات. سب سے پہلی عادت رد عمل, ریئیکشنری ہوتے ہیں. اب یہ جتنی چیزیں ہیں نا ان کو آپ لکھ کر ایک چیک لسٹ بنائیں گی تاکہ علاج شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری بیماری کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار, تمام محرومیوں کا ذمہ دار یا تو والدین کو کہہ دیتے ہیں یا اساتذہ کو, ہمسایوں کو, دوستوں کو, اور کچھ نہیں تو حکومت کو, اور کسی کو نہ دیں. کہتے ہیں جی دنیا کے حالات ہی نہیں ٹھیک, ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں, اس دنیا میں تو کوئی کامیاب بھی نہیں ہوتا. آپ خود سے پوچھئے کیا میری عادات میں یہ تو نہیں کہ میں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتی ہوں. اگر یہ ہے نا تو آپ اس کو بڑا سا کر کے لکھیں اور اس میں ایک بہت بڑا اپنے کراس لگانا ہے. ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے جو اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں کو ہی قرار دیں گے, کیونکہ یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے. ہم جس دنیا میں بھیجیں گے یہ جنت نہیں ہے, ہمیں انہی کانٹوں کے بیچ میں پھول بونے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. تو جب بھی کوئی باتیں مانیے, ذمہ داری کو لے لیجئے, اور یہ بہت جرأت مند بات ہوتی ہے. یس آئی واز رانگ, اٹس می بیکاز آف دیٹ وی آر لیٹ, یہ میری وجہ سے لیٹ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں بچہ رو رہا تھا, بڑا رو رہا تھا, اس کو کرنا تھا, یہ تھا, ٹریفک تھی. نہیں, بہت جرأت کے ساتھ مانیے کہ ہاں اس میں میری بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے, تو رد عمل کی عادت ناکام لوگوں کی عادت ہوتی ہے. دوسری عادت انجام سے بے پرواہی, ہیٹ لیس ایٹیچیوڈ. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے, موڈی چھٹی کرتے ہیں, دیکھیں گے جو ہوگا دیکھ لیں گے, پے کٹتی ہے تو کٹے. چلو کہتے ہیں لوگ کہ نہیں آئے, آپ نے امید دلائی تھی ہم دعوت میں آئیں گے, نہیں آئے بعد میں دیکھیں گے. یعنی یہ ایک نشہ ہوتا ہے. پھر لکھ لیجئے کہ عادت ایک نشہ ہے اور اس نشے کو توڑنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے کسی ہیروئن یا شراب کے نشے ہی سے نشہ چھڑوانا. پتہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کام نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان انجام سے بے پرواہ کے کام کرتا ہے. بعض دفعہ ینگ لڑکوں کو دیکھے تیز ڈرائیو کرتے ہیں, بعض دفعہ ریسیں لگا لیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ہم ہائی وے پہ ہیں, ان کو پتہ ہے پولیس ہمیں پکڑ لے گی, لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا. اور آج کے دور میں جو الڑ قسم کا لوگوں کو رویہ سکھایا جا رہا ہے نا فلموں اور ہیرو ہیروئنوں سے, اس میں یہ بہت عام ہے. آپ دیکھیں گے بہت کیئر لیس بعض دفعہ لوگ ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں. ایسی عادت جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو یا تو کسی کھڈے میں گرا دے گی اور یا انسان کسی جگہ پانی میں ڈوب کے مر جائے گا, لیکن وہ کسی کامیابی میں نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آج کے لیے جیتے ہیں, حال کے لیے جیو, نہ ان کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے اور نہ یہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کل کا دن لے لیں, اپنی پورے دن کی مصروفیات کو بیٹھ کے سوچیں اور لکھیں میں نے پورے دن میں کتنے کام انجام کے خوف یا انجام کو سامنے رکھے بغیر کیے. مثال دیتی ہوں, چلے آپ کو سوچنا اور آسان لگے گا انشاءاللہ. مثلاً آپ اپنا ویٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. اب آپ کا یہ سوچ تھی, آپ نے سوچا ہوا کہ میں ایسی چیزیں نہیں کھاؤں گی کہ جو مجھے تکلیف دیتی ہیں. اب آپ کل ویکینڈ تھا, आप कहीं गई दावत में या कोई घर में, आपने देखा खूब क्रीम से भरे हुए केक थे, कुकीज़ थी, वहाँ फ्राई किए हुआ चिकन, उस वक्त आपने क्या किया? खा लो, देखेंगे क्या होगा। होता है ये मामला हमारे साथ, ऐसा होता है ना, हम उस वक्त जाते हैं जो भी होगा। बाज़ दफ़ा शुगर का पेशेंट, लाओ मिठाई खाते हैं फिर जो भी होगा। और अमूमन हमारी ईटिंग हैबिट्स होती है ना, उसमें हम बहुत मजबूर होते हैं। इज़ इट ट्रू और नॉट? इंजाम से बेपरवाही। एक जुमला कहीं पढ़ा था मैंने कि चीनी का एक चम्मच जो आप खाते हैं वो आपके मुंह में 2-3 मिनट तक रहता है, क्योंकि उसका टेस्ट मुंह में इतने देर रहेगा। उसके बाद आपकी ये जो एसोफेगस होती है, जो आपकी स्टमक की नाली होती है, इसमें फिर 3-4 मिनट रहेगा, और आपके स्टमक में 6 घंटे रहेगा। ऑलमोस्ट 6 घंटे में फूड प्रोसेस हो जाता है, और आपकी इंटेस्टाइंस में 1 दिन तक रहेगा। फिर उसके बाद जिस्म से गंदगी बन के निकलता है ना, लेकिन आपकी कमर यानी आपकी वेस्ट के इर्द गिर्द फॉरएवर रहेगा, जो आपको मोटा कर देगा। तो कभी भी ऐसा कोई मामला हो, इंजाम से बेपरवाह ना हो। अल्लाह ताला ने सूरत अल फातिहा में हमें पहले दिन ये सबक दिया कि मुत्तकी कौन है? एहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। इंजाम को सामने रख के चलता है। अक्लमंद है वो शख्स जो घर से निकले तो उसको पता हो मैंने कहाँ जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है आई डोंट नो, आप क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, आज क्या हो रहा है आई डोंट नो। ये एटीट्यूड इंसान को नाकामियों की तरफ डाल देता है। तीसरी आदत जो नाकाम होने वाले लोगों की होती है, अहम काम कल पर छोड़ना। आज का काम जब आप कल पे छोड़ेंगे तो कल क्या होगा? दो काम होंगे। जब दो होंगे आप तो वही थे जिनसे आज भी नहीं कम हुआ। जब आप कल पे दो डालेंगे तो आपकी हिम्मत थोड़ी और कम हो जाएगी, और बिलफर्ज आपने कल भी ना किया तो परसों आपके ऊपर 3 गुना बोझ होगा। अब एक बंदा 5 किलो बोझ ही ना उठा सके और उसको 15 किलो उठाना पड़े तो नुकसान होगा ना, और एक वक्त फिर आएगा आप गिव अप कर लेते हैं, दैट्स इट। आज का काम जब पीछे पड़ता है ना तो उससे हमारा मामला बिगड़ जाता है। नाकामी ये इंसान को बहुत बड़ी फिर देखनी पड़ती है। पहले ही हिम्मत टूटी होती है फिर बिल्कुल ही नहीं कर पाते, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो ये आदत भी इंसान को कई जगह शर्मिंदा करती है। और अहम काम जब कल पे छोड़ते हैं, आप जा रहे हैं यहाँ से, अभी आपके पास पूरी रात है सोने को, आप कहते नहीं कल सुबह आके सफाई कर लूँगी, चले कल सुबह आके शीट बना लूँगी, कल सुबह आके ये करूँगी, तो अगले दिन तो आपको ये भूल ही गया कि आप इतनी सर्दी में और सुबह बिस्तर से नींद छोड़ के आए हैं, और आते ही अगर आपको बता चले 2-4 और काम करके फिर मैंने क्लास लेनी है, तो आप कहेंगे मैं छुट्टी ना कर लूँ, जाके भी तो इतना काम करना पड़ेगा, तो फिर हिम्मत कम होने लगती है। चौथी आदत, मनफी सोच, नेगेटिव अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा बड़ा दीमक है। नेगेटिविटी जो होती है ना, ये बंदे को इंसानों से भी दूर करती है, अल्लाह से भी दूर करती है। बस लोग हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, वो सोचते हैं कि दुनिया में मेरे सिवा सब खराब है, मेरे सिवा किसी को जन्नत में नहीं जाना, मैं बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और ऐसी सोच के पीछे खुद पसंदी होती है। जैसा घर मैं चला सकती हूँ कोई चला ही नहीं सकता। लो अपनी बेटी नहीं, उसकी बात नहीं पसंद आती, बहू की कहाँ आएगी। और आप देखेंगे कि उम्र के साथ साथ ये आदत बंदे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। आप जब अपने एक छोटे से स्केल्टन में रहते हैं ना, आप हैं, आपके मियाँ हैं, बच्चे हैं, आपको अपनी आदत नहीं पता चलती। आपको ये आदत कब पता चलेगी? नंबर एक, जब आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा यकीन करें 18-20 साल की होने तक बच्चियों को अपनी आदत बिल्कुल नहीं पता होती, हमें भी नहीं पता होता उनको देखकर, क्योंकि हर चीज़ उनके मुवाफिक चल रही है। बाप ने भी बात मान ली, भाई ने भी मान ली, घर पे हर चीज़ ठीक है। बिगड़ती कब है? बात जब वो ससुराल में पहुंचती हैं। अब वहां जाके बस हर बात का बतंगड़, आप सीधी करें उनको उल्टी लगती है, आप टेढ़ा पकड़ते हैं वो सीधा पकड़ते हैं। नतीजा क्या होता है कि ये चीज़ फिर इंसान की तरक्की के रास्ते में बड़ा पत्थर बन जाती है। ऐसा इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसको तो अपनी ज़ात से आज ही उठाएं। मैं इस सारी बातों को कहते हुए जो एक एक्टिविटी जहन में सोच रही हूँ, आपको आइडिया देती हूँ, बाद में काम आप करेंगे उस पर। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं वहाँ सामने एक बहुत खूबसूरत जन्नत है, एक बहुत अच्छी जगह मैं पहुँच रही हूँ, और ये जो आदत है ना, ये बीच में पत्थर है। आप एक किस तरह एक्टिविटी बनाएं कि एक इमेज है और उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर पे रिएक्शनरी होना है, फिर इंजाम से बेपरवाही, फिर अहम काम कल पे छोड़ना, नेगेटिव सोच, ये हर्डल रेस से गुजर कर कामयाबी मिलेगी। आप इसके एक और भी आइडिया में ले सकते हैं कि जैसे लोग चेयर्स के साथ खेलते हैं ना, हर्डल रेस होती है, कुर्सियाँ बीच में से हटाते जाते हैं और भागते जाते हैं, जितनी हमारी आदत में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी ना, हम देर से अपने टारगेट पे पहुँचेंगे। और इंशाल्लाह एक एक करके हटा दें, एक एक करके हटाएं, चेंज कभी ओवरनाइट नहीं आती। हल्की हल्की गाड़ी की स्पीड स्लो करेंगे ना, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें फ़ायदा देंगी, आसानी हो जाएगी। फिर पांचवी आदत जो इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है, पहले बोलना फिर सुनने की अदाकारी करना। यानी पहले बोलना, जो मुंह में होता है वो बोल देते हैं लोग, बोल दिया बोल दिया, और फिर बाद में कहते हैं अब तुम बोलो क्या कहती हो, और उस वक़्त भी वो सुन नहीं रहे होते। कुछ लोग अपने दिल की बात बेचैन होते हैं बयान करने के लिए, हमेशा अपनी बात कह सुन के फिर अगले को जब कहते हैं ना कि अच्छा भाई अब आप बोलो, तो अगला सोचता है कि चलो अब ये मेरी सुन लेंगे, वो नहीं सुन रहे होते। ये बहुत बड़ी नाकामी है। आप इसको मुख्तसरन ये भी कर सकते हैं कि दूसरे की ना सुननी। हमारे यहाँ उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, मैं ना मानूँ, इसको कह लें मैं ना सुनूँ। ये आदत अच्छी नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान को दो कान दिए और एक मुंह दिया, एक ज़ुबान दी। अगर हम ज़ुबान और कानों के साथ इंसाफ करें, तो किसी ने कहा कि कानों और इस ज़ुबान के साथ इंसाफ करो, कहा क्या, कहा ज़ुबान एक है कम इस्तेमाल करो, कान दो हैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो इससे भी इंशाल्लाह इंसान अपने आप को निकाल सकता है। छठी आदत जो कामयाबियों में रुकावट है वो है अदम तामन, नॉट बींग कोऑपरेटिव। कुछ लोग कोऑपरेटिव नहीं होते। मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगता है, ऑनलाइन पे जो स्पिरुल जन्ना कोर्स चल रहा है 2010 वाला, तो उसकी कोऑर्डिनेटर ना रिफत खान, तो वो जो भी ईमेल अपने स्टाफ को भेजती है ना, मुझे भी सारी आती हैं साथ साथ सीसी में, तो उन्होंने एक नीचे अपना बनाया हुआ टेम्पलेट बहुत अच्छा लगता है, जिसका खुलासा क्या है, इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सल्यूशन, कि अगर आप किसी चीज़ के हल का हिस्सा नहीं है ना, तो डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या पता चला, हम सब इस हॉल में बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई मसला हल नहीं कर पा रही ना आपका, या आप सोचें कि अगर मैं यहाँ बैठे हुए किसी बंदे का कोई मसला हल नहीं कर रही, तो फिर समझ लें कि आप मसला पैदा कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी में अमूमन इस चीज़ों को हम अहम नहीं समझते, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। लोगों के साथ कोऑपरेटिव रहें, इस तरीके से हमेशा कोऑपरेटिव रहें, तामन ठीक है जी हो जाएगा, कोई नहीं। बस लोग हमेशा दाल में आए हुए रोड़े की तरह अटकते रहते हैं, हर वक्त उनके जहन में ये होता है कि कुछ भी ठीक नहीं, या कम से कम हमारे मामले में तो कुछ ठीक नहीं, और इसकी वजह से वो फिर पीछे रह जाते हैं। सातवीं चीज़ इंसान को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो क्या है, कि उसके जहन का मुंतशिर होना, फोकस नहीं हो पाते। बहुत कुछ एक इंसान करना चाहता है, लेकिन जहनी तौर पर डिस्ट्रैक्टेड इतना है, एक एक चीज़ को इधर से उधर, उधर से इधर करते करते वक्त ही उसका निकल चुका होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए इंसान को वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अब ये सात वो आदत है कि जिनके ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखेगा। हम अब आगे चलते हैं कामयाबियों की तरफ। इस बुक में से कुछ चीज़ें जो हमने अपने अंदर लेके आनी है, एक किस्म का हमने उसका नेगेटिव एंगल देख लिया, अब उसी को बस पॉजिटिव एंड पे लेके चलना है। इसका प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं खुलवाती इधर, कि ये पूरी बुक आपको नेट पे मिल जाएगी। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आदत को डिफ़ाइन किया है कि आदत क्या होती है, और इंसान जब आदत बदलने के लिए निकलता है तो वो उसको कितना बड़ा माइलेज स्टोन आपको मिलता है, और वो क्या है कि इंसान अपने आप को कैसे बदले। तो सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान को अपने अंदर इंशाल्लाह डालनी है, मुझे भी डालनी है, आपने भी डालनी है, आप ऐसे कर सकते हैं, एक दरख्त बना के उसके अंदर 3 डब्बे खाली डाल लें, जहन में आ रहा होगा अगर जो मैं बोल रही हूँ, ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो नीचे जड़ में सबसे पहले पहली आदत लिखिए, फिर उसके बाद जड़ ही के अंदर दूसरी लिखें, फिर तीसरी, फिर उसके बाद दरख्त का एक तना बनाएं जैसे ट्रंक होता है, उसके अंदर आदत नंबर 4 और 5 लिखेंगे आप, फिर उसके बाद ऊपर दरख्त का जो झाड़ है ना उसके अंदर अपनी आदत नंबर 6 लिखेंगे, और आखिर में फिर दरख्त की जो ऊपर की टॉप है बिल्कुल एंड पे वहाँ पे आप साथ रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बहार आएगी और आप अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में लाएंगे वो क्या है कि मुस्बत सोच पैदा करनी है। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को कबूल करें। जो आपको मिलना था मिल गया, जो आपका नसीब था वो आपको अल्लाह ताला ने दे दिया और आप अब उससे लड़ नहीं सकते। तकदीर के फैसलों को मानिए, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं उससे। आप अपने आप को इस सोच में रखें, अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया, मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं, मेरी शादी सबसे अच्छे घर में हुई, मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है। कह के देखें, अगर आपको लगे भी ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इलाज करना है ना, अब चीज़ बतानी थोड़ी है सिर्फ, इसको हमने अपनी ज़िंदगी में लेके भी तो आना है ना। तो आप देखेंगे कि जब आपकी सोच मुस्बत होगी ना तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप अपने आप को बहुत कामयाब महसूस करेंगे और आप अपने आप को बिल्कुल इस नज़र से देखेंगे कि आप बिल्कुल एक नई शख्सियत हैं। करना क्या आपने, आज से बस आप अपने बारे में आईना देखते हैं ना, उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखें। मिसाल है, अगर आप सोचें कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं, बिलफर्ज मेरा रंग डाल है या मेरे चेहरे पे निशान है, कोई भी, अमूमन यंग लोगों को ये ज़्यादा गम होता है, बड़े होने के बाद तो सब एक ही जैसा लग जाता है। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है आप उसको ढूंढें और फिर उसके बाद कहें, नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, मेरे अंदर कई खूबियाँ मौजूद हैं। मिसाल है, आपको रंग का खौफ है ना, तब जो ब्लैक पीपल होते हैं हबशी, कोई कहीं अखबार में छपी हुई कहीं की कोई तस्वीर है ना, वो अपने मिरर पे लगा लें और आप फिर कंपेयर करें, आप उसके रंग को अपने रंग के साथ देखें, आपको लगेगा कि मेरा रंग ऐसा नहीं है। आप लाइट कपड़े पहन लें, आप अपने आप को थोड़ा सा इस एंगल में करें कि जो भी रंग आपका है वो पहने जो आपके ऊपर जचे, इस तरह की और बातें। आपका अपना घर अच्छा नहीं लगता, बिलफर्ज ये भी एक नेगेटिव सोच में इंसान की आती है चीज़। तो मुस्बत सोच कैसे पैदा करें, एक रात बाहर रह के देख लें आपका घर, वो कहते हैं ना कि टिंकों की कुटिया क्यों ना हो, घर घर होता है। आप बाहर सर्दी में खड़े हैं और आप जब अपने घर में आएंगे तो आप कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है घर आ गया। खुद से खुद काम कराएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों पे खुश होंगे। साथ ही साथ हम इन चीज़ों को इस्लाम से रिलेट करेंगे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक दुआ सिखाई, हर दिन सुबह पढ़ते हैं और शाम को तीन तीन बार, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदन नबीयन, कि अल्लाह मैं तेरे रब होने पर, मोहम्मद सल्लम के नबी होने पर और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से आप इंशाल्लाह ताला अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस करेंगे, जितना भी कर सकें। बस दफ़ा जब हमारे ऊपर कोई सिचुएशन आती है ना, उस वक़्त हम नहीं कर पाते, तो आप अपने साथ कुछ अहद करें, लिखिए। मैं आपको एक छोटा सा अहदनामा लिखवाती हूँ कि आपके अंदर मुस्बत सोच कैसे आए। आप जो बात आपके साथ पेश होने वाली होती है ना, उसको पहले से सोचें। कोई भी मामला, जिस शख्स के बारे में आप बदगुमान रहते हैं, अब आपको पता चल रहा है वो आपके घर रहने आ रहा है या आपको उसके पास जाना है, आप पहले ही आपके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, हाय अब पता नहीं क्या होगा, अब हर वक्त तनकीद होगी, अब हर वक्त रोक टोक होगी। नहीं, आप क्या करें, नंबर एक इमेजिनेशन में लाएं और सोचें इस दफ़ा की मुलाकात को मैंने खुशगवार बनाना है। नंबर एक, अगर कोई मेरे पास एक महीना रहने आ रहा है, 30 दिन है, तो मैंने इन 30 दिनों में एक भी मौका ऐसा नहीं पैदा होने देना कि उनको मेरे से गिला हो। चाहे आपको ये नामुमकिन लग रहा हो ना गोल, फिर भी करिए, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर जुरत पैदा होगी और आप अपने आप को मज़बूत महसूस करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखिए, ऐसे मौके पे जब कोई ऐसा इंसान आ रहा हो तो आप अपने इस दिल को यकीन दिलाएं कि अब उन्होंने खुद को बदल लिया है, इस दफ़ा वो मेरे पास आएंगी तो वो उस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करेंगी जैसे कि उनका पहले था। कोई भी मिसाल ले सकते हैं आप लोग, अपने आप को ये यकीन दिलाएं, झूठा यकीन दिलाएं, उन्होंने कोई कोर्स कर लिया है या मुझे किसी ने बताया है कि वो अपने अंदर बहुत तब्दीली पैदा कर चुकी हैं या उनको कोई सदमा पहुंचा उसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। इस तरह से रीजनिंग करते जाएं, आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा होगा। फिर तीसरा पॉइंट ये लिखिए कि आपने किसी एक बंदे को जो आपके करीबी हों, बस आपके शौहर हैं, बच्चे हैं, कोई दोस्त है जिनसे आप बहुत बुराई करती थी उनके साथ अपने ताल्लुकात की, जो आपके घर में आ रही हैं या आ रहे हैं, तो आप उनको अपने साथ हमराज बना लें। ये जितनी बातें खुद से कह रही है ना, आप उनको भी बता दें। मिसाल है, मेरी सास रहने आ रही हैं, मेरी नंद आ रही है, मेरी भावज आ रही है, मेरे कोई भी आ रहा है, तो मैंने इस दफ़ा उनके साथ बहुत अच्छा मामला रखना है, या उनको भी बता दें। एक जुमला लिख लें, जिस बंदे के बारे में आपके दिल में कोई बदगुमानी आए ना, उसकी तारीफ़ें शुरू कर दें दूसरों के सामने। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदा देती हैं। एक बहू जो थी, उनका ख्याल क्या था कि उनकी सास उनको पसंद नहीं करती, कोई भी मिसाल ले लें, किसी वजह से भी नहीं करती। अच्छा, सास जो ये सोचती थी कि बहू खुद को खुद पसंद समझती है, अमूमन ये सोच होती है, लोग कहते हैं जी हमें तो ये कुछ समझता ही नहीं है, हमसे तो कोई ये पूछती नहीं है, जहाँ जाना होता है ये जाते हैं, जहाँ रहना होता है रहते हैं, इस किस्म की सिचुएशन है। अब सिचुएशन कुछ इस किस्म की जब हो जाती है कि इंसान आपस में इस तरह की बदगुमानियाँ लेता है, तो दूसरे लोगों को भी कान लग जाते हैं। ये जो बहू थी ना, ये समझदार थी, इसने क्या करना शुरू कर दिया कि अपनी सास की तारीफ़ शुरू कर दी। जहाँ इसने देखना ना कोई ऐसा बंदा है जो इसकी सास को जानता है, यानी सास की कोई सहेली कोई कुछ, तो इसने कोई एक अच्छा जुमला बोल देना, अम्मी जान तो ऐसी हैं, अच्छा ऐसे कोई भी जुमला, अम्मी जान ने तो मुझे ये दिया, अम्मी ने तो कहा ये खा लो, बड़ी अच्छी है मेरी सास, बस एक छोटा सा जुमला, खामोश हो जाती। उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंगली उनकी सास का रवैया उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। आपको पता क्या हुआ, हकीकत में वो सास की सहेली ने उसको घर जाते ही फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी बहू तो आज तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। अच्छा, हानी वो भी इतनी बुरी तो नहीं है। यकीन करें, जिन लोगों की आप गीबतें या बुराइयां करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं दुख सुख, हमारा ये दुख सुख की गीबतों में जाना है, हमने क़यामत के दिन अल्लाह को यही कहना है, अल्लाह वो गीबतें थी, वो तुम्हारा दुख सुख था, आज से लिख लें मैंने उनकी तारीफ़ करनी है। हर बंदे को एक चीज़ की बड़ी तलब होती है, और वो इज्जत है। आपके शौहर, आपके बहू, जो हमारे यहाँ अमूमन ख़ानदानी रिश्तों में जो मुश्किल मामलात होते हैं, या आपके लोग, आपके उस्ताद, आपके शागिर्द, आपके कुलीग्स, जहाँ भी हम रहते हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी कांटों की सेज होती है, आप उसको जीतने का एक तरीका रख लें कि लोगों के बारे में मुस्बत राय हो जाए, नहीं ये बहुत अच्छी है, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे ये चीज़ दी है, और आप फील करेंगे कि इसके साथ आपकी सोच बदलेगी। इंशाल्लाह आप इसको देखें तो मुस्बत सोच के, मैं मिसाल देती हूँ, चलें कैसे होता है जी के हाय हाय नॉर्वे आ गए, -20 -25, देखो ज़रा इन्होंने भी इधर ही आना था, देखो मेरे तो जोड़ों में दर्द ही नहीं जाती, ठंड तो मेरी हड्डियों में बैठ गई है। अब ये सोच कौन सी है, ना शुक्री की सोच है। मैं जब लफ्ज़ मुस्बत सोच बोलती हूँ ना, तो मेरे जहन में शुक्रगुजार इंसान आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दिया। पॉजिटिव एटीट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम तो पहला सबक हमें पॉजिटिव बनने का देता है, अल्लाह के मामले में भी रदीतु बिल्लाहि रब्बन, और माँ बाप के लिए भी अनेशकुर ली वली वालिदैया। बच्चे माँ बाप के शुक्रगुजार नहीं होते, उनके खिलाफ हो जाते हैं, बीवियाँ शोहरों की नहीं होती, उनकी होती हैं। 10 खूबियाँ होंगी ना हमारे शोहरों में, और हम सिर्फ उसकी एक बुराई को बुनियाद बना के उनके पीछे लग जाते हैं। तो आज से मुस्बत सोच के आप अपने से खुद बैठ के रीजनिंग करें। पहली बात है, अल्लाह ताला थैंक यू, अल्लाह ताला आपने मुझे सबसे अच्छा बनाया, जो भी मेरे अंदर ख़राबी है ना वो मेरी अपनी की कमी है। यही तो हम सीखते हैं दुआओं में, दुआ इस्तग़फ़ार क्या है, सैयदुल इस्तग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी वाना अब्दुका वाना ला अहदिका वादिका मस्तदातु, कि अल्लाह मैं इतराफ़ करती हूँ तूने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, इसके बावजूद मैं गुनाह करती हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ही ना कर रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मुस्बत सोच रखिए अल्लाह के साथ, लिखिए इसको। आज के बाद अपनी तकदीर का शिकवा नहीं आपने किसी से करना। आप बीमार हैं, आपकी माँ आपको पाकिस्तान से फ़ोन करती है, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ ना भी निकल रही हो ना तो और जोश से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बात करें ना कभी दबी दबी ढीली, तो उनको अगले फ़ोन तक आपकी वो आवाज़ ही नहीं भूलनी, ना कहना पता नहीं मेरी बेटी को क्या है। पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है, बंदा खुश दिखे। हज़रत ईसा के बारे में आता है कि کہ جب روزہ رکھتے تھے تو اپنے ہونٹوں پہ تیل لگا لیتے تھے، کیوں؟ کہ روزے کا اثر میرے چہرے پہ نہ دکھے۔ تو جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پازیٹیو ہوں گے نا، تو آپ فیل کریں گے کہ آپ خوش رہنے لگیں گے۔ روئے دھوئے، شکایتی رویے، میں آپ سب کو اگر پوائنٹ آؤٹ نہ بھی کروں نا، تو کچھ لوگوں کا میرے ذہن میں پکا امیج ہے، میں آپ میں سے شاید 80-90% لوگوں کے گھریلو حالات نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جانتی، کوئی استاد بھی نہیں جانتا، آپ کے ساتھ رہنے والے جانتے ہوں گے، ہم میں سے کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا، لیکن آپ ادھر بیٹھیں اور ایک ایک بندہ اگر اپنے بارے میں رائے لینا چاہنا، تو آپ کی اس کلاس میں سے ہی، ہم باہر والوں کو تو بات ہی نہ کریں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں میں بہت پٹی فیل کرتی ہوں۔ پٹی کیا ہوتا ہے؟ ترس۔ مجھے لگتا ہے یہ ان کی زندگی بڑی دکھی ہے، کوئی ان کو کوئی غم ہے بہت بڑا، اور ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن آپ کے فیس ایکشنز، انسانوں میں بہت جگہ ہوتا ہے، آپ کو میرے پتہ نہیں کیا کیا دکھتے ہوں گے، لیکن ہمیں دوسروں کے دکھتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کے لیے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ دکھی لوگ، جس کو لفظ دکھی کا ایک آئیڈیا لیتے ہیں نا، وہ آتا ہے، یہ ناشکری کی بات ہوگی۔ میں نہیں مان سکتی، واللہ ہی میں نہیں مان سکتی کہ میرا رب کسی کے ساتھ ظلم کرے گا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو ہمیشہ دکھوں میں نہیں ڈالتا۔ یہ میں ہوں کہ جو اپنی زندگی کو ہمیشہ نگیٹو لیتی ہوں۔ چائنیز کہاوت ہے کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، پھر جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ یہ رویہ، یہ پازیٹیو سوچ نہیں ہوتی۔ اگر تو آپ نے صرف یہ ٹاپک پورا کرنا ہے نا، میں آپ کو ساتوں لکھاتی ہوں، آپ کہیں گے چلے نوٹس بن گئے، خدا حافظ۔ لیکن اگر ریئلٹی میں آپ چینجنگ کا سفر کرنا چاہتے ہیں نا، خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آج سے خود کو یہ احساس دلائیں، میرے اللہ نے مجھے سب سے اچھا دیا۔ یہ خود پسندی نہیں ہوتی، یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، سیچوریٹڈ۔ جیسے آپ پانی پیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایسے بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں نا، اس طرح بندے مومن کا دل شکر سے نچڑ رہا ہوتا ہے، قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی سوچ کیا ہوگی، آپ مثال ہے کہ یہاں 40 لوگوں کو دیکھ رہی ہیں، 50 کو دیکھتی ہیں، تو آپ کی فیلنگ کیا آنی چاہیے؟ اللہ اس سے بھی میں اچھی ہوں، اللہ میں اس سے بھی اچھی ہوں، اللہ میری شکل اس سے بھی اچھی ہے، اللہ آپ نے مجھے اتنا کیوں دیا؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ روئیں نا کہ اللہ تجھے نہیں دیا، مثبت سوچ جب اللہ کے بارے میں آئے گی نا آپ کے دل میں، تو آپ کہیں گے اللہ آپ نے مجھے اتنا کیوں دیا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنی نعمتوں کی بارش کیوں کی؟ آپ فیل کریں گے آپ کی زندگی کا سٹائل بدل جائے گا۔ صرف آج اس پہ بات کریں، بلکہ میں نے ابھی اس بات کو کہتے ہوئے اپنی بات کو تھوڑا سا جو پلان کیا ہوا ہے نا مائنڈ میں، اس کو تھوڑا روک لیا۔ اگر واللہ ہی آپ کسی کی بھی کتاب پڑھ لیں، یہ 7 ہیبٹس سین کووے کی پڑھ لیں، یا ڈیل کارنگی کی بکس پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مفکر کی پڑھ لیں، آپ کو فائدہ کب ہوگا جس دن آپ نے اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر ان عادات کو لینا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ سب سے پہلے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے لانا ہے، کھرچ کے پھینکے، نہیں ہے میرے پاس کوئی خامی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کے ماتھے سے تیوریاں ہٹ جائیں گی۔ تیوری کس چیز کی علامت ہے؟ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں نا، آپ ان کے لیے مثبت سوچ نہیں رکھتے، غصہ کب آتا ہے؟ آپ فیل کریں آپ نارمل ہیں اس وقت، اور اگر آپ جب غصے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے فیس ایکسپریشنز بدلتے ہیں۔ اللہ کے بعد ہم پھر بندوں کے معاملے میں مثبت رویے میں سب سے پہلے ماں باپ کو لیتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اب سوچ کا انداز دے دیا، انشاءاللہ صرف میں وہ چند رشتے لکھانا چاہتی ہوں کہ جس میں انشاءاللہ آپ نے خود کو پرکھنا۔ یقین کریں آپ کی خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ نے آج یہ ایکٹیویٹی اپنے ساتھ کر لی اور تھوڑا دن اس پہ غور کرتے رہے۔ اگلی بات آپ سنیں ہی نا جب تک آپ خود کو اس میں نہ ڈھونڈیں۔ اللہ کے بعد دوسرا جو ہمارا نگیٹو ایٹیچیوڈ یا پازیٹیو نہ ہونا آتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ آتا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا، یقین کریں لٹرلی سائیکک بچے ہوتے ہیں، وہ جوان جب ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے باقاعدہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ کی شکل اچھی نہیں ہوتی، دوسرے سے اپنی شکل کو کمپیئر کرتے ہیں، کچھ کی عادات اچھی نہیں ہوتی، اور اس کا ایک اپوزٹ بھی ہوتا ہے ساتھ، ان کو اپنے ماں باپ ہی نہیں پسند ہوتا، ان کو غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی کسی ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی، یعنی ینگ تھا کوئی، اس کو بڑے ہی شکوے تھے اپنے ماں باپ سے، یا ہوتے ہیں اکثر، آج کی جو سوچ ہے اس میں تو یہ بہت دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پسند اپنے ماں باپ، تم چاہتے ہو یہ مر جائیں؟ اب ایک دم اس کو شعور آیا، تم بدلنا چاہتے ہو، چھوڑ دو ان ماں باپ کو، جاؤ تم کسی ٹرسٹ میں جا کے کہو کہ مجھے کوئی دوسری ماں دے دو۔ ये दो चार जो सख्त जुमले थे ना, तो मैंने उसका अक्स देखा, समझ आ जाती है क्यों कि हमें उसकी कदर नहीं होती। अल्लाह ताला ने जी जो बात कह दी ना कि रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा, ये माँ बाप के मामले में मुस्बत सोच की इंतहा है। अनिश्कुर ली वली वाली दैया, अल्लाह कहते मेरा भी शुक्र अदा करो अपने माँ बाप का करो, और जितना आप अल्लाह के करीब आएंगे ना उतना आपको अपने माँ बाप अच्छे लगेंगे। नेगेटिविटी नहीं हो सकती। तो आप आज से दूसरा काम जो अपनी शख्सियत पे अब करें वो क्या करें कि बैठें माजी से पीछे, जहाँ तक आपका सोच जाती है, बचपन 2 साल की थी आप, 3 की थी, 4 की थी, आपके दिल में कुछ शिकवे छुपे हुए हैं, मेरी अम्मी मुझे ऐसे करती थी, उसको ये करती थी। हर बंदे के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ शिकवे छुपे होते हैं जो उसको अपने माँ बाप से होते हैं। हमारी अच्छी तरबियत नहीं की, हमें वक्त पे नहीं बताया, हमेशा मेरी बहन को ही तवज्जो देती थी और भाई को बहुत ज़्यादा आगे करती थी, और मैं तो बोलना चाहती थी तो मेरी तो शख्सियत दबा दी। एक लड़का था तो वो आग जैसे जहर उगलते हैं ना, वो ऐसे जहर अपने बाप के लिए उगल रहा था कि इस शख्स ने मेरी शख्सियत को ख़राब कर दिया। हर वक्त मुझे टोकते थे, छोटे भाई को बहुत तवज्जो देते थे। तो आज अगर कहीं है आपके अंदर छुपा हुआ, इसको खुरच के फेंकें, खुद को यकीन दिलाएं और लिखें। और आप इसमें अपने लिए एक होमवर्क लिखें, कम से कम 3 बार रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा, दिल की पूरी मोहब्बतों को सामने रखते हुए ये दुआ लिखें अपने नोट्स में कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। और ये कब पता चलता है, जब वो दूर होते हैं। मुस्बत सोच के है कि उनको आप अगर ज़िंदगी में वो है ना तो उनको इसका एहसास दिलाएं, और यकीन करें ये इतनी प्यारी दुआ है। मैं आज रात को भी सोच रही थी, जैसे हम दिन में जो काम करते हैं ना, हमारी रात हमारी करवटें, अल्लाह ताला कहते हैं क़्याम वक़ूद वला जुनूबिहिम। मैंने पिछले कितने साल से, और मुझे लगता है कि जितना इंसान को अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत होती है ना उतनी ज़्यादा उसको अपने माँ बाप से मोहब्बत हो जाती है। मैं नहीं कहती गलत सही का फ़र्क मिट जाए, वो गलत कहते हैं मान जाए, मैं इस वक्त जो बात कर रही हूँ ना ये आपकी अपनी शख्सियत के अंदर उभरने लगे जिस बात की कर रही हूँ। मुझे आज का याद है, लिटरली मुझे लगता है कि मैंने आज रात जितनी देर में सोई हूँ ना, मैंने कम से कम 5-6 दफ़ा शऊर के साथ रब रहम हुमा कमा रब यानी पढ़ा। एक दफ़ा मुझे अपनी बहन याद आई, मुझे उनका कोई गम याद आया, तो मेरी ज़ुबान पे एक ही दुआ रब रहम हुमा। क्यों? कि अगर मेरी बहन को कोई मसला होगा तो मेरी माँ को दुख होगा ना, तो अल्लाह तो मेरी माँ के इस दुख को दूर कर दे। कभी भाई याद आता है, कभी गम, कभी अपना कोई अगला, और मैं फील करती हूँ कि एक दुआ में सब की आती हैं कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम कर दे। तो आप अपने दिल से खुरच दें, अगर कहीं आपके से उन्होंने ज्यादती की होती है, ये भी मान लीजिए करते हैं माँ बाप, भोलपन में, नासमझी में, दीन से दूरी, माल कमाने लग गए, कोई कहता है आपने हमें मशीन बना लिया था, ट्रायल हम पे किए, तजर्बे सारे हम पे किए, हमें पाकिस्तान ले गए, फिर ले आए, फिर ये किया, हमारा मुस्तकबिल नहीं बनने दिया, कर दिया था, मिट्टी डालो, फिर इंशाल्लाह आप फील करेंगे।